आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र मिश्र। अमर उजाला आवाज में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केतन आनंद जी से। केतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
केतन जी, शुरू से चलते हैं, इसे फिल्मी पृष्ठभूमि से जो भी कलाकार जो भी आते हैं, जो है एक तो बड़ा सहज होता है पारिवारिक माहौल में जो है बड़े बड़े होते हैं करियर बनाना, आगे चलकर किस तरह की चुनौतियां आती हैं उनके सामने?
अब क्या है कि एक तरह से इतने बड़े परिवार में पैदा होना एक ब्लेसिंग भी होती है
जी,
ऊपर वाली की देन है, लेकिन हर ब्लेसिंग के साथ उसकी परछाई भी आती है। तो हम लोगों को उस परछाई को पार करना पड़ता है, थोड़ी बहुत अपनी रोशनी खोजनी पड़ती है। वो जब उन लोगों का जब तक उजाला है, जब तक वो जिंदा है, वो रहता है, तो उसके उजाले में आप भी नाचते हो, वो रोशनी आपकी हो जाती है। वी हैव सीन फेम लाइक दैट। पर अपना मार्ग काटना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है अनलेस यू आर गेटिंग अ ब्रेक विथ योर ओन फैमिली। तो अगर वो हुआ तो भी आपको अपनी ऑडियंस पैदा करनी पड़ती है। एक वाइब्रेशन होती है जो आप अपनी होती है, और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती है तो आप आगे बढ़ते हो, एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप स्ट्रगल करते हैं। तो हमारा सिलसिला भी ऐसे रहा है, कुछ चीज़ें चली हैं, कुछ नहीं चली हैं, लेकिन एक समय आया था, मैंने एक फिल्म विजय आनंद जी के लिए की थी, हम रहना हम, जहाँ मैंने डायरेक्ट की थी उनके लिए
जी।
वो पिक्चर अच्छी बनी थी लेकिन उसका रिलीज अच्छा नहीं मिला, लेकिन तरन आदर्श ने बड़ी तारीफ की थी जब बॉक्स ऑफिस। तो वहाँ से थोड़ा बहुत फिर शर्त मेरी मैंने एक बनाई थी आउटसाइड फैमिली, वो इंडियन पैनोरामा में गई थी 1986 ईयर्स पैनोरामा में उन्होंने इनवाइट किया था, और 1986 हैदराबाद में वो थी NTR के टाइम। तो वहाँ से थोड़ा सा मेरा कम से कम क्रिटिकल ग्राफ शुरू हो गया। फिर बाद में मैंने गुलशन जी के लिए आजा मेरी जान बनाई, जो किशन कुमार को लॉन्च करने के लिए हमने किया था, तो वहाँ गाने वाने उसके बड़े हिट हुए थे। उसके बाद फिर हमने अपने पिताजी के साथ मिलके परमवीर चक्र बनाया, दैट वॉज सक्सेसफुल बिकॉज दैट वॉज अ फैमिली
जी,
पूरी फैमिली थी उसमें। 7 एपिसोड मैंने किए थे, 7 चेतन साहब ने किए थे और एक विजय आनंद जी ने किए थे, और मेरा जो भाई था छोटा भाई विवेक आनंद वो DOP था थ्रू आउट
जी।
तो पूरी फैमिली का वो एफर्ट था और वो दूरदर्शन पर अच्छा चला, तो वहाँ थोड़ा बहुत हमको थोड़ी सी रिकग्निशन मिली कि भाई ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने मेरे पिताजी के 10th डेथ एनिवर्सरी के लिए एक अपनी माँ के साथ मिलकर एक किताब को पब्लिश की, और एक उनके लिए एक डॉक्यू सीरीज बनाई जो जर्मनी में, अमेरिका में फेस्टिवल में गई, और कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में गई, ऐसी दिल्ली में दिखाई गई, हैदराबाद गई, जतिन दास के एक छोटा शॉर्ट फिल्म एग्जीबिशन होता है उड़ीसा में, वहाँ गई। फिर एक कॉपी मैंने सचिन जी रे इंस्टीट्यूट में दी है, एक पूना इंस्टीट्यूट में दी है। तो वैसे करता रहा हूँ मैं काम, अब मैं कर रहा हूँ देव साहब
जी। हाँ, उस पर इस सीरीज के बारे में बात करेंगे जो है। शुरू में अभिनय में भी आप सक्रिय रहे हैं जो है, तो कब लगा कि जो है कैमरे के पीछे खड़े होकर जो है सिनेमा की विरासत को थोड़ा आगे बढ़ाना है, वो कौन से मोमेंट्स थे?
वो क्या ना, ये चीज जो है ये हमारी पूरी फैमिली में है कि कुछ अलग हटके करना है
जी।
तो हम ज्यादातर सवाई देव साहब के, बिकॉज देव साहब स्टार थे, तो वो हर तरह के प्रोजेक्ट करते थे, एंड ही वाज अ लव वेरी बिग स्टार ना, कौन उनको प्यार नहीं करता है?
बिल्कुल,
क्योंकि वो खुद प्यार करते थे अपने फैंस को, उनमें ये खूबी थी कि वो ही लव्ड हिज फैंस। तो लेकिन हमारे फैमिली में वी बिलोंग टू एक जोरा होता है ओटवा सिनेमा, यानी के पर्सनल सिनेमा, जो अपना स्टैंप लेके आता है। पर्सनल सिनेमा का मतलब ऑथरशिप इज योर, यू आर द ऑथर ऑफ योर सिनेमा, तो स्टैंप ऑफ अथॉरिटी होता है उसमें। तो वो टाइप ऑफ सिनेमा मेरे पिताजी बिलीव करते थे, वो बहुत स्टबर्न थे, वो हिलते नहीं थे वहाँ से। वो अपने छोटे भाई को भी छोड़ के फिल्में बनाने शुरू कर दी थी। हकीकत में देव साहब नहीं थे,
धर्मजी
थे। तो हमने भी वैसे किया, शर्त मैंने बनाई सीरियल किलर पर 1986 में, जहाँ नेगेटिव हीरो का तो स्टाइल ही नहीं था,
नहीं था।
आज तो हर हीरो नेगेटिव है, आजकल पॉजिटिव हीरो को ढूंढना ही मुश्किल है। हीरो क्या, कोई भी कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है, आज सब नेगेटिव हो गए। तो दिस वाज अ फोरनर टू ऑल दैट। तो थोड़ा सा हट के चले हम भी, और अभी भी करेंगे, लेकिन यू कांट डिनाई मेन स्ट्रीम, बिकॉज मेन स्ट्रीम गुड सिनेमा ऑलवेज वर्क्स। देखो, हीर रांझा वॉज अ हिट, हकीकत वॉज अ हिट, गाइड वॉज अ हिट, ये गुड सिनेमा है, इनको आज आप क्लासिक सिनेमा कह सकते हैं।
बिल्कुल।
और कहीं एक दिन हम भी ऐसा बनाते हैं जो लोग कहेंगे क्लासिक बनाई।
और सर, ये अपनी फिल्में आज भी चलती हैं, तो कहीं देखने मिलता तो मतलब
इनकी अपनी लाइफ है,
लाइफ है, और इनके मुकाबले आज तक तो सिनेमा कहीं
हकीकत जैसी फिल्म बहुत मुश्किल है, क्योंकि हकीकत सिर्फ वॉर मूवी नहीं है, उसमें उन्होंने ह्यूमन एंड्योरेंस, ह्यूमन ड्रामा, और दुख जो होता है लड़ाई में, और जो ऐसे मौके पर हमको कुछ ऐसी डिसीशंस लेनी पड़ती हैं, जहाँ एक बाप अपने बेटे को मौत के मुंह में ही भेज देता है, ये जानते हुए कि वो शायद वापस नहीं आएगा। तो दिस इज़ अ टेरेबल डिसीशन इन वॉर, लेकिन लेनी पड़ती है। वो छोटा बच्चा जो था हकीकत में, वही चिल्लाता, ये कैसा बाप है, अपने बेटे को देखो कहाँ भेज रहा है, सुइसाइड कर
सर। बचपन में कब लगा था कि आप इतने बड़े फिल्मी बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं जो है, और देव साहब इतने बड़े सुपरस्टार, कौन सा मोमेंट्स रहा जो आपको लगा हुआ कि जो है?
ये हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम हमारा चाचा था यार, हमें भूषा गाय बुलाता था, हम उसकी गोद में खेलते थे,
भूषा गाय।
फिर बड़े हुए तो हमने उनके साथ काम किया। तेरे मेरे सपने फिल्म बनाई थी मेरे चाचा ने, मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। वहाँ देव साहब ने मुझे नोटिस किया कि उनकी तू आ रहा है फिल्म में, मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ, तो क्या करना चाहता है, मैंने कहा मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। लाइक डैडी, नहीं 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 नहीं, तुझे डायरेक्टर बनना है तो तुझे ये पता होना चाहिए कि कैमरे के सामने क्या होता है।
अच्छा।
आ जा एक्टिंग कर मेरे साथ।
अच्छा।
ले गए मुझे हरे राम हरे कृष्ण में, मैं उनके साथ था, और मुझे एक रोल दिया उन्होंने, छोटा मोटा रोल किया मैंने। तो आई लर्न दैट वॉज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग। तो मैं एक्टिंग भी कर चुका हूँ, डायरेक्शन भी कर चुका हूँ, गोल्डी साहब के साथ जब मैंने काम किया था एडिटिंग भी सीखी, पोस्ट प्रोडक्शन वर्क सीखा। तो आई लर्न एवरी थिंग अंडर ऑल द थ्री ब्रदर्स। हीर रांझा मेरी पहली फिल्म थी प्रोफेशनली, उसमें मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था और असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों था। तो प्रोडक्शन का भी काम किया मैंने, डायरेक्शन का भी सीखा। और फिर चेतन साहब का सेंस ऑफ ड्रामा बहुत था। वो ड्रामा में उनको कोई नहीं,
आपने होश संभाला हुआ। तो कौन सी फिल्म देखी होगी देव साहब की आपने सिनेमा में, या पहली फिल्म
याद नहीं आती क्योंकि हम देखते रहते थे।
हाँ।
पर हम ये देखते, ये फीलिंग नहीं आती थी कि हमारा चाचा एक बहुत बड़ा स्टार है।
हाँ।
हैप्पी को लकी गाय कि ये चाचा अपना बड़ा अच्छा है, मजेदार आदमी, खेलता रहता है हमारे साथ और हमेशा खुश रहता है, ये फीलिंग आती थी। पर ये कभी नहीं, ये महसूस नहीं होता था कि वो कितना बड़ा स्टार है। जब काम करना शुरू किया उनके लिए हरे राम के टाइम में, और जब असिस्टेंट का काम कर रहे थे, जो रिसेप्शन इनको मिलता था, जो एनर्जी ये देते थे लोगों को, खासकर जब ये खुद काम करते थे अपनी फिल्म में, हरे राम में डायरेक्टर भी थे, अनबीटेबल। वैसी एनर्जी मैंने आज, मेरे मुझे 55 साल हो गए हैं, ऐसी एनर्जी किसी में नहीं देखी जैसे देव साहब।
और वो लास्ट तक वही एनर्जी रहा, बरकरार रहा,
अप टू द एज ऑफ 88 जब वो गुजरे,
सेम एनर्जी।
इसलिए वहां, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री में यही कहता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर द देव इन द मैन, नॉट द मैन इन द देव, यानी कि मैं उसको देव समझता हूँ, क्योंकि वो आज लोग देव आनंद को याद रखते हैं, धर्मदेव आनंद को नहीं। धर्मदेव आनंद एक मनुष्य था, वो पैदा हुआ, उसने मोहब्बत की, उसने शादी की, बच्चे पैदा किए, बहुत खूबसूरत प्रोफेशन में था, बहुत सक्सेसफुल था, गुजर गया। लेकिन देव, देव आनंद, ये जो है ये एक वाइब्रेशन,
नाम ही अपना
ये, हाँ ये मेरे लिए एक देव है। तो मैं इस देव की सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, 60 साल की सेलिब्रेशन करूंगा जो 60-65 ईयर्स इसने स्टारडम में काटे हैं, और क्या क्या माहौल था और मेरा थीम होगा। मैं हर माहौल को उसी चैप्टर को वो पीरियड क्रिएट करूंगा वर्चुअली। आप 50s में बैठोगे जब उनकी बात हो रही होगी, 60s में बैठोगे, 70s, तो आप पूरा VFX में देखोगे किस जमाने से वो गुजरा, और मेरा थीम बन जाता है जमाना बदलता गया लेकिन देव आनंद चलता गया,
बिल्कुल
जिंदगी का साथ निभाता।
अरे वाह क्या बात है। ऐसा जब आप कॉलेज में रहे होंगे, स्कूल में, तो जो है लोगों को लगता है कि देव साहब भतीजे हैं जो है, तो किस तरह से रिएक्शन, क्या बोलते रहेंगे कि
रिएक्शन आता था जब हम सेंट स्टीवेंस कॉलेज में गए थे रैगिंग के टाइम।
अच्छा,
देवानंद का भतीजा आया, चले जरा सर फ्रेशर। ज्यादा रगड़ते थे मुझे। अच्छा। तब मैं कहता था यार ये कैसा चाचा है, मुझे यार पिटाई हो रही है मेरी। तब स्टार में भूल जाता है इंसान। बट ही वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग, और इतना सक्सेसफुल आदमी हमारी फैमिली में था और हमें कुछ पता नहीं था। कहते ना तालाब की मछली ये नहीं जानती दूसरी तालाब की मछली कितनी बड़ी होती है।
अच्छा, कभी शूटिंग पे बचपन में पहली बार कब गए होंगे?
जब हम बहुत छोटे थे।
अच्छा।
एक फिल्म बन रही थी फंटूश।
फंटूश।
तो हम छोटे से बच्चे थे, तो एक गाने की पिक्चराइजेशन हो रही थी, तो एक दिन मेरे पिताजी आए और हमको स्कूल से पिकअप किया।
अच्छा।
बिफोर क्लासेज एंडेड गाड़ी में बिठाया और ले गए फिल्म सिटी, वहाँ 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 चार दिन शूटिंग हो रही थी। फिल्म सिटी शायद बनी नहीं, कुछ लोकेशन में शूटिंग करते थे, तो गाने में दो बच्चे हैं वो वेव कर रहे हैं देव साहब को, वो हमारा पहला शॉट था लाइफ में।
अच्छा।
फिल्म में देव अंकल गाना गा रहे हैं और शीला रमानी बैठी थी एक ठेले पर, वो ठेला खेलते हुए फंटूश का गाना गा रहे हैं और दो बच्चे वेव कर रहे हैं, तो शॉट में हमारा पहला शॉट था।
देव साहब की सारी फिल्में तो खैर यादगार क्लासिक फिल्म रही हैं, आपको जो है कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद लगती है, अच्छी लगती है उनकी? तो आपने कई
फिल्में तो उनकी बहुत अच्छी हैं। देखो टैक्सी ड्राइवर इज अ गुड फिल्म। बाजी मैंने नहीं देखी इतनी, बाजी में स्टाइल से सेट किया था गुरुदत्त ने उनके, जो हमने टैक्सी ड्राइवर में एनहांस किया था, उसके बाद वो उनका फैशन बन गया था जैकेट्स काफी, वो इन दो फिल्मों से शुरू किया था उन्होंने। फिर उनकी झूल थी, इतनी अच्छी फिल्म थी। फिर गाइड का तो कहना ही नहीं, बिकॉज वो तो एकदम वाटर मार्क है उस फिल्म का, लेकिन ही वॉज वेरी गुड इन हम दोनों, वेरी गुड इन काला पानी, वेरी गुड इन काला बाजार। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन अ फिल्म कॉल आंधियां जो मेरे पिताजी ने बनाई थी, वो फिल्म फेस्टिवल में गई थी वो फिल्म, लेकिन लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस में इतनी नहीं चली थी, बिकॉज उसका सब्जेक्ट थोड़ा सा सीरियस था। इट वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, पर मॉस्को और ये फ्रांस वांस गई थी वो, चाइना भी गई थी वो, तो उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, तो परफॉर्मेंसेज उनकी बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट। गाइड टॉप से टॉल, बिकॉज गाइड टू गाइड थी, उसको आप अलग ही समझो, लेकिन अलग अलग रोल किए हैं देव साहब ने, गैम्बलर के रोल किए हैं, प्राइम मिनिस्टर के रोल
जी, अरे हाँ,
देश प्रदेश में वो इमिग्रेंट थे, वो उसका रोल किया है, हरे राम में एक भाई अपनी बहन को ढूंढ रहा है, तो अलग अलग रोल करते रहते थे, लेकिन थ्रू आउट व्हाट एवर कैरेक्टर ही वॉज, उनका दिल हमेशा साफ होता था और रोमांस के साथ करते थे, स्टाइल में करते थे। रियल लाइफ में भी तीनों भाइयों में एक बात थी, उनके मुंह से गाली कभी नहीं।
अरे
MCBC ये जो हम बात करते हैं ना, साला तक नहीं निकल रहा, बहुत प्योर ट्रेवल लैंग्वेज में तीनों भाई। हम पता नहीं वो उनका कैमरामैन, मेरी पहली फिल्म टूटे खिलौने, उनका कैमरामैन, हमने उनका ही कैमरामैन लिया था, बिंदर रत्रा, वीर रत्रा। मैं तो अपना थोड़ा सा अमेरिकन स्लैंग मैन बोल देता था सेट पर, तो वो हंसने लगता, मैं आप बिंदर साहब क्यों हंस रहे हो, कहता है कुनकी, वो कुनकी बुलाता, पेट नेम था मेरा कुनकी,
कुनकी
कुनकी कहता था कुनकी के बजाय। तू कहाँ पैदा हो गया इस फैमिली में, देव के मुंह से, चेतन के मुंह से ऐसे वर्ड नहीं लिखे, तू कहाँ से पैदा हो गया? मैंने कहा मैं मॉडर्न बच्चा हूँ। तो हंसते थे
संस्कार। अच्छा देव साहब की कौन सी फिल्म का रीमेक बन सकता है?
देव साहब राइटिंग में छोड़ गए हैं सुनील के साथ, मेरी जितनी फिल्में नवकेतन में बनी हैं उनका रीमेक नहीं बनी।
अच्छा,
और ये भी नहीं बन रहा होता, जो मैं बना रहा हूँ डॉक्यू सीरीज,
हाँ सीरीज जो बना रहे हैं आप,
ये मैंने खास सुनील से रिक्वेस्ट की कि देख ये मैं अपने अंकल और तेरे पिता की सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, उनकी लाइफ स्टोरी और कुछ छोटे मोटे टुटके नहीं सुना रहा, पूरी इंडस्ट्री आके अपनी कहानियां बताएगी, अपनी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स बताएगी, उन पर मैं डेवलप करूंगा, उनकी इंटरव्यूज कॉन्वर्सेशन होंगे, वो क्या एक्सपीरियंस कर गए देव साहब के साथ, उनका क्या इम्प्रेशन था देव साहब के साथ काम करते हुए या इंस्पायर होते हुए, तो मैं इंडस्ट्री के जितने लोगों को है बुलाऊंगा, कुछ सेट्स पर बुलाऊंगा, कुछ उनके घर जाके शूट करूंगा, साउथ के लोग ले लूंगा, रजनी जी को पकड़ूंगा मैं, कमला हसन वॉन्टेड टू डू प्रोडक्शन उनको पकड़ूंगा, और साउथ में भी जाऊंगा, जहां जहां देव साहब गए हैं मैं जाके वहां लोगों को पकड़ने वाला हूँ, डायरेक्टर्स को भी राइटर्स को भी, और फिर मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स को पकड़ूंगा कि भैया आप देव साहब के म्यूजिक के जवाब में मुझे नहीं क्यों दोगे, ये मैं नई बात कर रहा हूँ, और आज के कवि लिरिक्स लिखेंगे, आप जवाब दो शायर साहब, जवाब दो नीरज का, जवाब दो और मुझे एक नई ट्यून दो, आपका कौन सा फेवरेट पीरियड है 60s का, वही नोट्स पकड़ के आज के ट्यून बनाओ चलो।
देव साहब इस पर सीरीज बनाने का कैसा ख्याल आया, कब विचार आया कि इस पर काम करना चाहिए?
ये ख्याल कीड़ा डाला था मेरे दिमाग में, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था अली पीटर जॉन, वो फैमिली का बहुत करीब था और देव साहब का बहुत फेवरेट जर्नलिस्ट था, देव साहब उसको ले जाते थे अपने साथ सेट पर, जब स्टोरी सेटिंग के लिए भी जाते थे अली आजा महाबलेश्वर ले जाते थे उसको, बाउंस करते थे आइडियाज कैसा लगा कैसा लगा, तो अपने असिस्टेंट अली को पकड़ लेते थे। उसने मुझे एक दिन बुलाया कि देव साहब का 98th बर्थ एनिवर्सरी हो रही,
अच्छा
उसने कहा कि मैं तुझे चीफ गेस्ट इन्वाइट करना चाहता हूँ, फैमिली तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, तू नहीं जानता तेरा अंकल कौन था, मैं कहा मैं जानता हूँ यार बहुत बड़ा स्टार था, कहता नहीं तू नहीं जानता वो कौन है,
हाँ
ये क्या बात कर रहे हो, कहता नहीं तू कौन ये नहीं जानता वो कौन है, समझ नहीं आई
क्यों,
जब मैं गया जब मैं गया और ये प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने एक क्लब बनाया हुआ था और ये लॉयर्स डॉक्टर्स प्रोफेशनल बैंकर्स आर्किटेक्ट्स जजेस अरे इकट्ठे होके स्टेज पर देव साहब के गाने गा रहे हैं, उनके सीन्स एनैक्ट कर रहे हैं और इतने प्यार से और इतनी प्रोफेशनलिज्म टच से मैं दंग रह गया। फिर जब मुझे स्टेज पर बुलाया मैंने कहा देखो दिस इज थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैंने कहा देखो आई एम वेरी हैप्पी कि आप उनका जन्मदिन मना रहे हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज उनकी डेथ एनिवर्सरी आपने, क्योंकि ये लेजेंड है और लेजेंड्स डोंट डाई और आपने आज प्रूव कर दिया ये नहीं मरे, ये अली ने मुझे पॉइंट आउट किया था। तो अली ने कहा कि फिर आप उनके 100वें बर्थडे पर आप कुछ करोगे, तो मैंने कहा मैं एक सीरीज बनाऊंगा।
इस सीरीज में एक तो घटनाक्रम होंगी जो है और फिर लोग
छोटे छोटे उनके झलके लाइफ के भी देंगे, लेकिन ज्यादातर उनके करिश्मा पर उनके काम पर उनकी एटीट्यूड पर उनकी एनर्जी पर और किस तरह वो लोगों के साथ पेश होते थे, किस तरह उनसे प्यार करते थे, प्यार बहुत करते थे लोगों से वो। और ये एक आदमी है जो अपनी पूरी लाइफ में खुद फोन उठाता था, सेक्रेटरी नहीं था उनका और खुद लोगों को बुलाता था, इंटरव्यू करता था, इंटरव्यू देता था और उसके अलावा थ्रू आउट हिज करियर 2011 में गुजरे हैं, एक भी बॉडी गार्ड नहीं था, अकेला जा सकता अपने खेलों के जा रहा था,
ये तो सीन था, मैंने
डर नहीं था, नेशनल पार्टी स्टार्ट की उस आदमी ने, पंगा ले लिया सब सरकार के साथ, वाज लाइक दैट वेरी बोल्ड मैन। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा वो माहौल क्या था और हर जमाने से जो गुजरता जा रहा था ये जिंदगी का किस जिंदगी के साथ निभा रहा था, पॉलिटिकल टाइम भी दिखाऊंगा मैं कि पॉलिटिक्स में ये हो रहा था, जब इमरजेंसी थी तो उसको बुलाया था सेंटर में आओ पार्टी में, शुक्ला साहब
अच्छा
हाँ किशोर कुमार नहीं गया, देवानंद नहीं गया, बैन हो गए
अच्छा
हाँ, He will like that. He didn't care. I'm not going. This is emergency. And I'm a Democrat. बात करता मैं.
तो सर हकीकत को लेकर क्या तैयारी थी, हकीकत टू को लेकर क्या तैयारी थी?
हकीकत टू का जो एंड हुआ था ना, उसका लास्ट टाइटल है द एंड इज नॉट येट.
अच्छा, जो उसने
द एंड नहीं है.
हाँ हाँ हाँ.
तो मैं अपने पिताजी को हमेशा पूछता था कि ये क्या अजीब गरीब टाइटल दे दिया मेरा बेटा. ये इसलिए दिया है क्योंकि ये कंबख्त मेरा है.
उस समय
50 साल बाद एग्जैक्टली वही हो. चौवन लाल आया था, जब भी मार के गया, यहाँ जो भी उनका प्रीमियर था आया, गुजरात गया, थालियों में खाना खाया, इतना जश्न किया पीएम के साथ, और वहाँ गलवान में धोखा दे दिया. तो ये हकीकत है ना. और फिर मेरा थीम है कर चले हम खिदा वतन साथियों. आई बिगिन फ्रॉम देयर. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मेरा क्लाइमैक्स है एक बच्चा बन जाता है. मैं पॉइंट करता हूँ कि किसके हवाले किया है. उस बच्चे को पकड़ूंगा.
अच्छा, यहाँ से जो है चीजें
ये आदमी और आदमी ज्वाइन कर. तो जब गलवान आता है, आज वो सीनियर रिटायर होने वाला मेजर जनरल है, उसका बेटा गलवान. वही बात जो जयंत और धर्मेंद्र के बीच में थी, आज इसके साथ हो रहा है. और वो क्राई जो उसका था, ये कैसा बाप है अपने बेटे को कहाँ भेज रहा है, आज वो बाप है वो उसका. ये मेरा बेसिक थीम होगा. और बीच में फिर अलग अलग कहानियां जैसे हकीकत में आएंगी. फिर इनकी शादी और ये और वो और इनका पूरा करियर, बिकॉज इट्स अ 50-year गैप. तो फ्लैश बैक से वो जैसे आज के टाइमलाइन होते हैं. क्लाइमैक्स मेरा गलवान.
तो अभी कास्टिंग हो रहा है, क्या किसको सोच रहे हैं
इसमें? बड़े स्टार है
नहीं।
इसमें आने ही चाहिए, बिकॉज ये भारी सब्जेक्ट है. इसमें इफेक्ट भी आएंगे क्योंकि वॉर सीन्स होंगे और इनके करियर दिखाएंगे. पूरे आर्मी का बैकग्राउंड है. और बार बार ये आदमी जाता है उसी पत्थर पर जहाँ उसकी बहन और उसका बेस्ट फ्रेंड मरा था, वहाँ पूल चढ़ाता है और यही देखता है, गलवान की तरफ देखता रहता है क्योंकि वहीं मरे थे वो. पांगोंग लेक मैं गया हूँ. पांगोंग लेक पद्मवीर चक्र की शूटिंग में जब गया था मैं, पांगोंग लेक तक गया. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लेक, बहुत हॉस्टाइल टेरिटरी है. वहीं जाके कहता है वहाँ देखता रहता है क्योंकि चाइनीज बॉर्डर इज जस्ट 15 किलोमीटर, यू कैन सी देम मूविंग अराउंड. कहता है ये साले फिर आएंगे, कहता रहता है ये आएंगे और आता है. देखो
तो कब तक शुरू होने की शूटिंग?
अभी पहले इसको स्टार्ट करता हूँ, फिर इसकी स्क्रिप्टिंग अभी रेडी है क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग.
ये कब शुरू हो जाएगा दीवाना?
ये तो अभी मैं ये महीने के अंदर अंदर इसकी राइटिंग वाइटिंग ऑलरेडी
ऑन.
हाँ, इसको मैं हट करके माउंट करूंगा. फिर आई एम होपिंग कि वैलेंटाइन डे तक कुछ मेरा रेडी हो तो एक शो रील करके एक पार्टी करें देव साहब के नाम में. भाई वैलेंटाइन है, रोमांटिक हीरो से आके मिलिए तो एक शो रील दिखा देंगे.
अभी डिसीजन नहीं किस ओटीटी के लिए बना रहे हैं, बाद में इसका
नहीं. अभी तो हम प्ले करेंगे ना. देखो ये इतना सस्ता नहीं बनेगा, लेकिन उसको कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा. लेकिन वी विल चूज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. देन आई विल चूज इट, बिकॉज देखो इसको रिलीज अच्छी मिलनी चाहिए.
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.
हाँ, देव साहब की स्टोरी है, ये फिर नहीं आएगी. तो जो चैनल लेता है एक्चुअली द चैनल विल बी लकी.
बिल्कुल,
बिकॉज हम किसी और को बनाने नहीं देंगे देव साहब की कहानी, वो तो खुद कह गए थे. तो अब उनका बेटा इन्वॉल्व है, उसने मुझे लेटर NOC दे दिया है कि आई एम विथ यू ब्रदर. और आखिरी एपिसोड में वो खुद आएगा, बोलेगा अपने पिताजी के बारे में. शेखर है, शेखर आ जाएगा. सुहेला उसकी बहन है, वो एक्टिंग करती है आजकल OTT प्लेटफॉर्म में. फैमिली मैन में थी, आर्या में थी, अच्छा काम कर रही है. वो आएगी, प्लेज करती है, वो बात करेंगी, इंटरव्यूज लेंगी. तो आशा पारेख और वहीदा जी से लेके मॉडर्न बच्चों को सबको इन्वॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि आमिर भी काम कर चुका है, गोविंदा भी काम कर चुका है, सलमान भी काम कर चुका है, एलन मैम को भी पकड़ूंगा, शर्मिला जी को भी पकड़ूंगा, सिमी गरवा को पकड़ूंगा कि आपने कितने रांदेवू किए थे देव साहब के साथ, मुझे क्लिप्स दिखाई और बात करिए देव साहब के बारे में. तो ये सब आएगा. आप जैसे पत्रकारों को पकड़ूंगा कि आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, देव साहब के साथ इंटरव्यू हुआ था, कैसे थे वो, क्या इंटरव्यू किया था. तो ये सारा मिक्स होगा ओवर द इयर्स 50-60-70-80.
इसको आप डायरेक्ट ही करेंगे या कोई?
मैं डायरेक्ट करूंगा, बिकॉज सुनील का यही कहना है कि
दूसरे का.
हाँ, क्योंकि हाउ कैन एनीबॉडी गेट इनटू आवर पर्सनल एक्सपीरियंस.
बिल्कुल.
तो मेरे अंडर यंगस्टर्स आएंगे काम करेंगे, बिकॉज आज की टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है। तो मैंने अपनी टीम की भी है, स्पेशल इफेक्ट्स VFX मैन है और मेरा DOP यंग होगा, मेरी पूरी टीम यंग है, जैसे देव साहब रखते थे, यू टू ऑलवेज कीप यंग पीपल अराउंड, आई एम डूइंग द सेम थिंग, यंग पीपल जो भी बैठे हुए हैं लाते हैं टीम। तो मैं आई वर्क विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, परमवीर चक्र में भी हम 6-6, 7-7 कैमरे के साथ शूट करते हैं। मैंने तो अपने भाई को एक टैंक की गन में बांध दिया था कि जा शॉट्स ले, बेचारा लटक लटक के शॉट ले रहा था।
डैडी कितना प्रभाव रहा सिनेमा पर, चेतन अंतर की अगर बात करें?
चेतन साहब ही वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, बहुत स्टबर्न थे
जी,
नंबर वन दैट, नंबर टू बहुत गहराई थी और सेंस ऑफ ड्रामा बहुत, तो वो ज्यादा फिल्में उन्होंने बनाई नहीं है, लेकिन जो बनाई
है
हाँ उनमें एक अजीब गरीब गहराई है, चाहे वो चली ना चली। उनकी पहली पिक्चर नीचा नगर आज भी आज देख लो, क्या फिल्म है यार,
वही मैं नीचा नगर की बात कर रहा हूं।
हाँ बल्कि मैं इस इफी में मैंने रिक्वेस्ट किया NFDC को, क्या भैया आप उसको क्यों नहीं रिजुविनेट करते, वो एक ही प्रिंट है, बाकी नेगेटिव जल गया था, लैब में आग लग गई थी तो वो नेगेटिव जल गया था।
अच्छा
नीचा नगर का एक ही प्रिंट है, उसकी कॉपी उन्होंने दी थी, लेकिन उसको रिजुविनेट करेंगे तो उसको नई जिंदगी मिल जाएगी। पहली फिल्म है जिसने कान वो नहीं था, ऐसी फिल्मों को, आलम आरा को, अब्बास साहब की फिल्मों को, वैसी वैसी फिल्मों को उन्होंने रिजुविनेट किया तो बहुत अच्छा। हमारी तो
अभी बना, अभी जो प्रिंट हुए कहाँ पर लैब में रखा हुआ है वो जो होगा सर?
नहीं इनका आर्काइव में है, जो जो प्रिंट नीचा नगर का है वो पूना आर्काइव में है।
वो अच्छा अच्छा
वो सिखाते हैं, ये
दिखाते हैं कि
स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, हमारा हकीकत है उधर, हीर रांझा है, आखिरी खत है और ये नीचा नगर।
नीचा नगर से कुछ खास भी बातें डैडी ने बताया किस तरह से शुरू हुआ, वो तो पहली फिल्म थी वो 46 के आसपास।
हाँ डैडी नहीं बताते थे, मेरी मम्मी बताती थी। अच्छा। तो शी वाज इन्वॉल्व, उसकी लीडिंग लेडी रह चुकी है ना।
हाँ।
तो कामिनी कौशल थी और वो उमा आनंद थी, वो बताती थी किस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरह की शूटिंग की उन्होंने और किस तरह का सिम्बलिज्म था उस फिल्म में, क्योंकि वो ये नहीं दिखा सकते थे ना, पीरियड था 1946, हमको आज़ादी नहीं मिली थी,
हाँ नहीं मिली थी,
तो अंग्रेज नहीं दिखा सकते थे ये फिल्म एंटी ब्रिटिश है, तो एलिगोरिकली ऊंचा नगर एक्चुअली ब्राउन साहब था और नीचा नगर हमारे लोग थे, उनमें एक कैरेक्टर था जो चरखी चलाता था, वो गांधी का कैरेक्टर था, हमारा जो हीरो थे वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ नेहरू, तो इस तरह की कहानी उन्होंने रखी थी। एक नाला है, उस नाले को बंद कर देते हैं, वहाँ पानी नहीं जा रहा और वो उनको स्टाफ कर रहे हैं और पीछे से जाके वो हैजा फैल गया है, हॉस्पिटल खोल देते हैं कि देखो हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, तो उनका नारा बन जाता है मर जाएंगे लेकिन अस्पताल नहीं जाएंगे। तो ये गांधी जी का जो था ना सत्याग्रह, वो
नीचा नगर से लेकर आखिरी खत तक जितनी फिल्में रही हैं सारी यादगार फिल्में रही चाहे अब जो बीच में चर्चा हुई, बहुत सारी फिल्मों को टाइटल जो अजय देवगन की फिल्मों में वो क्या किस्सा था सर?
वो क्या हम अपना टाइटल कंटिन्यूसली रजिस्टर नहीं करते रहे।
अच्छा अच्छा अच्छा।
वो वीरू जी काम कर चुके थे तो उनको बड़ा शौक था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि
डैडी की और कौन सी फिल्म की जो है सीक्वल या रीमेक बनाई जा सकते हैं? शादियाँ हो गया, हिंद राजा खैर, तो टैक्सी ड्राइवर, और
डैडी डिडंट मेक दैट मेनी फिल्म्स। नवकेतन में अफसर बनाई थी पहली फिल्म की, फिर उन्होंने बनाई आंधियां अली अकबर खान को, नीचा नगर में तो उन्होंने रविशंकर को ब्रेक दिया था, पर वो नवकेतन की नहीं थी, नवकेतन वॉज फाउंडेड 1949। फिर अफसर बनाई, आंधियां बनाई, उसके बाद उन्होंने बनाई टैक्सी ड्राइव, क्योंकि गुरुदत्त की फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी लेकिन गुरुदत्त डायरेक्ट बाजी। फिर उन्होंने बने फंटूश,
फंटूशा,
तो उसके बाद वो थोड़े अलग हो गए। अच्छा। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बुद्धिस्ट, उसके बाद अंजलि, जो बाद में अर्पण उसका ट्रेलर रखा था, बुद्धिस्ट थीम था, उसमें निमी की शीला रमानी और चेतन आनंद हिमसेल्फ प्ले करे। अच्छा अच्छा हाँ ये कह रही है कि अफसर का रीमेक बन सकते बिगड़े आजम करके।
अच्छा, नीचा नगर का लहर नाम, हम हम मर जाएंगे पर घर जाएंगे बेस्ड ऑन कोविड लहर माइग्रेशन होगी।
शेखर की ये पानी जो थी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम नीचे नगर वो बनी तो नीचे नगर इंस्पायर्ड टू थ्री पीपल। एक तो जब वो बनी थी और फिल्म देखी थी वो एक नौजवान था कलकत्ता का एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता था उसका नाम था सत्यजीत रे। हाँ एक चिट्ठी लिखी थी पत्र लिखा था मेरे पिताजी को तो सर आपकी फिल्म देख के मैं इतना इंस्पायर हो गया हूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ के फिल्म मेकर बनने वाला हूँ। फिर उसने पात्र पाया। हाँ
ये थी पहली फिल्म देखी
फैन था मेरे पिता और बाद में फिर जब उसने हकीकत देखी तो हंसते हुए आया कि लवली फिल्म चेतन कि कहानी क्या है। तो चेतन साहब ने कहा ये कहानी नहीं है ये मोजी एक है असेंबल फिल्म है बहुत सारी कहानियां एक हंसने लगा वेरी गुड आइडिया।
आखिरी खत के साथ जो खर तक खत्म करते हैं तो आखिरी खत चेतन साहब की
आखिरी खत वॉज एन इंस्पिरेशन क्योंकि वो जब हकीकत की शूटिंग कर रहे थे तो उनको दमा की बीमारी थी तो रात को वो सो नहीं सकते थे अच्छी तरह तो बैठे रहते थे तो वो उस वक्त सोच में पड़ जाते थे कि लाइफ में मासूमियत मर गई है यार। लोग और कठोर होते जा रहे हैं इंडिफरेंट होते जा रहे हैं प्यार मोहब्बत ये सब वो तो समझे ही समझे लेकिन इनोसेंस मासूमियत वो नज़र नहीं आई। तो उनके दिमाग में आया कि अगर मैं एक बच्चा जो बोल भी नहीं सकता सिर्फ मम्मी मम्मा पापा कहता है ऐसे बच्चे को मैं मुंबई सिटी में मुझे बॉम्बे था अभी मुंबई तो बना नहीं छोड़ दूँ तो कोई उसको उठा के घर ले जाएगा या थाने ले जाएगा देखता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करते 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 आखिरी खत बन गई।
ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू जी थैंक यू।